नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।